ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جیسا کہ آپ سے کچھ لوگوں کو معلوم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے پچھلے ہفتے ہی کی بات ہے کہ ہمارے گھر میں ایک سے زیادہ افراد علیل ہو گئے، والدہ کی بھی طبیعت خراب تھی اور چھوٹی بیٹی جو تقریباً 1.5 سال کی ہے تو اس کی بھی کافی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، غالباً کہیں سے اس نے وائرل انفیکشن لے لیا تو اس کو کافی پروفیوسلی وامٹنگ شروع ہو گئی اور پیٹ بھی خراب ہو گیا، تو اس کا جو آؤٹ پٹ تھا باڈی کا، یعنی اس کی باڈی سے جو چیزیں خارج ہو رہی تھیں، تو ان کی وجہ سے ہمیں یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں وہ ڈی ہائیڈریٹڈ نہ ہو جائے۔ تو بھائی چونکہ ڈاکٹر ہیں، بھابھی بھی ڈاکٹر ہیں، تو ان سے مشورہ چلتا رہا، تو وہ چیک کرتے رہے کہ چھوٹی بچی ہے کہیں اس کو ڈی ہائیڈریشن نہ ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو لکوڈز دو، کلیئر لکوڈز دو، کھانا پینا بند کر دو، بس اس کا لکوڈ انٹیک ہونا چاہیے اور آؤٹ پٹ جو ہے وہ کم ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو علامات ہوتی ہیں ڈی ہائیڈریشن کی وہ چیک کرتے رہے کہ اگر خدا نہ خاصا ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جائے گی تو پھر تو اس کو ER لے جانا پڑے گا۔ تو اس دوران ایک انڈیکیشن ہمارے گھر والوں کو بھابھی نے بتائی، وہ یہ تھی کہ اگر تو یہ بالکل ان پٹ لینا بند کر دے، یعنی جو کلیئر لکوڈ اس کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ORS اور کوئی جوس وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز، تو وہ اگر تھوڑا بہت بھی لے رہی ہے نا اور اس کے رونے کے وقت اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور ڈائپر بھی خراب ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی ڈی ہائیڈریٹڈ نہیں ہوئی۔ لیکن جب یہ پوائنٹ آ جائے اگر کہ وہ بالکل ہی ان پٹ لینا بند کر دے، بالکل ہی لکوڈز لینا بند کر دے، تو یہ انڈیکیشن ہوگی کہ وہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو گئی ہے۔ اب جو ہے وہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ لکوڈز نہیں لے رہی، تو اب کوئی اور چارہ نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ اس کو ایمرجنسی روم لے جایا جائے اور وہاں پر IV کے ذریعے جو ہے وہ اس کے بدن کے اندر فلوئڈز داخل کیے جائیں۔ جب IV کے ذریعے سے یہ کیا جائے گا تب پھر جو ہے وہ دوبارہ کچھ لینا شروع کرے گی، ورنہ وہ نہیں لے گی۔ اور بالکل یہی ہوا، ایک دو دن تو اس طرح سے چلاتے رہے لیکن اس کی طبیعت جو ہے وہ بہتر ہونے، تھوڑا بہت سائن لگتا تھا کہ جیسے بہتر ہو جائے گی لیکن ہو نہیں پا رہی تھی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو بہت زیادہ وامٹنگ ہو جاتی، بہت زیادہ موشن ہو جاتا، تو پھر بالآخر فیصلہ یہی کیا کہ اس کو ER لے کے جایا جائے۔ کہ بالکل نہیں لے رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو گئی ہے۔ تو جب اس کو ER لے کے گئے تو وہاں پہ ڈاکٹرز نے چیک کیا، پہلے تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی اس کو تو ایڈمٹ کرنا پڑے گا، لیکن پھر اور چیزیں ہوئیں کہ نہیں، ایڈمٹ کرنے کے لیے جو اپروول پروسیس ہوتا ہے وہ ڈینائی ہوا کہ پہلے ٹیسٹ لے کر کے آؤ، اس کے ریزلٹس دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ایڈمٹ کریں گے۔ تو ہم اسی پروسیس کے دوران، کیونکہ ٹائم ذرا زیادہ لگ رہا تھا، تو ہم نے ڈاکٹر سے جو آن ڈیوٹی تھا اس سے یہ کہا کہ بھائی اتنی دیر میں اس کو کم از کم IV تو لگا دیں کہ کچھ تو اس کے بدن کے اندر جانا شروع ہے، اس لیے کہ بالکل ہی جو ہے یہ بدحال ہو رہی ہے، غنودگی طاری ہو رہی ہے اس کے اوپر، اٹھ نہیں پا رہی ہے، جاگ بھی نہیں پا رہی ہے۔ تو پھر ڈاکٹر نے جو ہے وہ IV اس کو لگا دی، اور اس آجز نے بھی دیکھا کہ IV فلوئڈ کے اندر کیا تھا، وہی سوڈیم کلورائڈ اور گلوکوز اور اسی طرح کی ایک دو چیزیں تھیں، کوئی ایسی خاص، کوئی بہت ہی کمپلیکیٹڈ میڈیسن، سوفسٹیکیٹڈ اینٹی بایوٹک کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر۔ لیکن IV لگانے کے لیے بیچاری 1.5 سال کی رقیہ کے پیروں کے اندر سوئیاں گھوپی گئیں اور ٹیپس لگائے گئے اور وہ روئی، थोड़ी चीखे चिल्लाई, बिलाखिर जो है वो आईवीएस के बदन में दाखिल हो गई और तकरीबन एक तकरीबन 2 या 2.5 घंटे ये आईवी चलती रही। और मजे की बात ये थी, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगी हम लोगों को, वो ये थी कि जैसे ही आईवी डॉक्टर ने खत्म करी, उसको निकाला, तो उसी वक्त जो है वो हम लोगों के अपने खाने पीने के लिए भी, हम वहां पे जो छोटा सा स्टोर था वहां से कुछ चीजें लेकर के आए, और जैसे ही रुकैया की नजर उन चीजों के ऊपर पड़ी, उसने लपक करके एक क्रैकर उठा लिया और खाना शुरू कर दिया। हम हैरान रह गए कि ये तो पीने की चीज नहीं ले रही थी, एक कतरा इसके मुंह से नहीं निकल पा रहा, अंदर नहीं उतर पा रहा था, और कहां इसने जो है वो एकदम से खाना शुरू कर दिया। और फिर वापस हम आए तो रास्ते में ही उसने फिर पीना भी और खाना भी शुरू कर दिया। फिर थोड़ा बहुत टाइम लगा, 1-1.5 दिन लगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो बैक टू नॉर्मल हो गई। तो रास्ते में जब हम वापस आ रहे थे, तो अहलिया ने बात दोबारा से कही कि देखें, हमें बताया था ना कि डिहाइड्रेटेड होने की निशानी यह है कि वो बिल्कुल ही कुछ लेना बंद कर देगी और फिर आईवी लगानी पड़ेगी, आईवी से ही फिर इसका के मामला जो है वो दोबारा नॉर्मल होगा। तो उस वक्त जिसके दिल में एक बात आई, जो कि इसने कहा कि देखें, बिल्कुल यही मामला, बिल्कुल यही बात हमारे मशायख भी समझाते हैं कि जब कोई शख्स रूहानी बीमारियों के अंदर इतना ज्यादा मुब्तला हो जाता है, रूहानी बीमारियों में इतना ज्यादा मुब्तला हो जाता है कि वो रूहानी तौर पर डिहाइड्रेटेड हो जाता है, तो अगरचे के जरा वापस जाएं उस फिजिकल बीमारी की तरफ, तो अगरचे के अकल को यह बात समझ में आती है कि भाई उसके बदन के अंदर से जो फ्लूइड्स हैं वो तो कम हो रहे हैं, जो उसको न्यूट्रिशन की, उसके बदन को जरूरत है, वो न्यूट्रिशन की जो लेवल है वो तो बहुत ज्यादा कम हो गया, जो उसके पास केमिकल्स का एक बैलेंस होना चाहिए बदन को जारी रखने के लिए, तवानाई के लिए, वो डिसबैलेंस हो गया है। तो अब अकली तौर पर तो इसका रिजल्ट, इसका रिएक्शन ये होना चाहिए था कि वो फौरन जो है वो इंटेक लेना शुरू कर दे, उसको तलब होनी चाहिए थी इंटेक की, उसको तलब पैदा होना चाहिए थी, क्योंकि उसके पास जो है वो लेवल्स कम हो गए हैं, अब उसको जरूरत है न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, लिक्विड्स की जरूरत है, तो उसको तो लेना चाहिए था, उसके पास तो तलब बढ़ जानी चाहिए थी इन चीजों की। लेकिन होता क्या है, बिल्कुल इसका रिवर्स होता है, जितना न्यूट्रिएंट लेवल जो है वो कम हो रहा है, उतनी तलब कम हो रही है, उतना जो है वो रिजेक्ट कर रही है। हत्ता के मेडिकल डॉक्टर्स ने इसको जो है वो एक श्योर साइन बना दिया कि जिस वक्त वो न्यूट्रिएंट्स लेने से बिल्कुल इनकार कर दे, समझ लो कि वो कंप्लीट डिहाइड्रेट हो गई है। ठीक है, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन अभी नहीं हुई, लेकिन माइल्ड डिहाइड्रेशन इतनी तो हो गई ना कि ईआर ले जाना पड़ा, डॉक्टर्स के पास ले जाना पड़ा, और फिर उसको सुइयां प्रिक करनी पड़ी उसके बदन के अंदर, और उसको मुंह के बजाय, जो कि नॉर्मल तरीका था इनटेक लेने का, गिजा देने का, आसान रास्ता क्या है, इंसान का मुंह अल्लाह ताला ने बनाया है, लेकिन मुंह से उसने लेने से इनकार कर दिया, तो अब सुइयों को घोप करके उसके बदन के अंदर, उसकी नसों के अंदर, उसकी जो वेन्स हैं उसके अंदर फिर न्यूट्रिएंट्स को दाखिल किया गया, और नतीजा क्या हुआ, थोड़ी ही देर में वो बैक टू नॉर्मल आ गई। इतनी ज्यादा भी नहीं पहुंची थी उसकी डिहाइड्रेशन कि उसको जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट किया जाना होता, और उसको जो है वो कई दिन लगते उसके ट्रीटमेंट के अंदर, और उसके जो है सारी चीजें फिर नॉर्मल आती, इतना ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं था। तो बस 2-2.5 घंटे के आईवी देने के बाद उसका मामला बैक टू नॉर्मल आ गया। तो यही बात साजिश ने भी कही कि हमारे मशायख बिल्कुल यही समझाते हैं कि जब कोई शख्स रूहानी बीमारियों के अंदर इतना ज्यादा गिरफ्तार हो जाता है, इतना डीप चला जाता है कि वो रूहानी तौर पर डिहाइड्रेटेड हो जाता है। रूहानी तौर पर डिहाइड्रेटेड होने का मतलब क्या, कि उसकी रूह को जरूरत है रूहानी गिजा की, उसकी रूह को जरूरत है रूहानी न्यूट्रिएंट्स की, लेकिन वो उनको ले नहीं, उसके पास न्यूट्रिएंट्स का लेवल जो है रूहानी वो बहुत कम हो गया है। अगर आप उसको गिजा दे रहे हैं तो वो गिजा उसको फायदा नहीं पहुंचा रही, बल्कि उसके बदन से वो निकल जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी को मोशंस लग जाए, किसी के जो है वो पेट खराब हो जाए, वॉमिटिंग शुरू हो जाए, अब आप उसको जो है वो अच्छी गिजा दें तो वो उसके बदन के अंदर ठहरेगी नहीं, बल्कि फौरन ही जो है वो बाहर निकल जाएगी। और उसकी तबीयत जो है वो और ज्यादा खराब हो जाती है। तो इसके लिए एक मिसाल जहन में आती है कि भाई एक रूहानी गिजा अल्लाह ताला ने बनाई है, वो है सलात, नमाज। नमाज मोमिन के लिए फायदेमंद होती है, और किस तरह से फायदेमंद होती है कि खाली नमाज पढ़ने से उसकी जिंदगी के ऊपर ऐसे असरात रूनुमा होते हैं कि वो तमाम मुनकरात और फहश किस्म के कामों से बच जाता है। इन्न सलाता तन्हा अनिल फोहशा इवल मुनकर, के सलात जो है वो तो फहश कामों से और मुनकरात से रोक। अब मुनकरात के अंदर हर चीज आ जाती है, जिस जिस चीज को मना कर दिया गया वो मुनकरात में से शामिल है। तो सलात का असर जो है वो तो मोमिन की जिंदगी पर ये होना चाहिए कि एक नमाज की वजह से उसकी पूरी की पूरी जिंदगी जो है वो प्योरीफाई हो जाए, इतना बड़ा फायदा होना चाहिए सलात का। लेकिन जो इंसान गुनाहों की जिंदगी में पड़ जाता है, वो नमाजें तो पढ़ रहा होता है लेकिन साथ साथ गुनाह भी जारी रहते हैं उसके। नमाज के बाहर तो क्या जारी रहेंगे, नमाज के अंदर भी गुनाह के ख्याल जारी रहते हैं। नमाज अल्लाह ताला के सामने पढ़ रहा होता है खड़ा होकर के, लेकिन दिमाग के अंदर गुनाहों के मंसूबे बना रहा होता है। तो ये तो नमाज का हाल होता है, उस नमाज का जिस नमाज ने इसको क्योर करना था, जिस नमाज ने इसकी जिंदगी को प्योरीफाई करना था। अब वो नमाज ही इतनी गंदी हो गई कि हदीस पाक में आता है कि कुछ लोगों की नमाज ऐसी होगी कि फटे कपड़े की तरह उनके मुंह के ऊपर मार दी जाएगी। तो नमाज जो है वो एक रूहानी न्यूट्रिएंट था, उसके बदन को इसकी जरूरत थी। इसी तरीके से नसीहत की बातें, जब इंसान गुनाह की जिंदगी में पड़ जाता है और नेकियां उसकी जिंदगी से कम हो जाती हैं, गुनाह के असरात उसकी जिंदगी के ऊपर गालिब आ जाते हैं, नमाजें तो पढ़ रहा है, गीबतें भी दबा के कर रहा है, झूठ ऐसे बोल रहा है जैसे कि कोई आम बात की जाती है, झूठ में उसके और उसके आम कॉन्वर्सेशन के दरमियान कोई फर्क नजर नहीं आता, पता नहीं चला सकते आप कि ये बात जो इसके मुंह से निकली ये सच थी कि झूठ थी, कुछ पता नहीं चलता। बदनजरी कर रहा होता है, बदकलामी कर रहा होता है, दूसरों को गालियां दे रहा होता है, फोहश मजाक आपस में एक दूसरों के साथ अपने दोस्तों के साथ कर रहा होता है, गंदी चीजें जो है वो टीवी स्क्रीन के ऊपर और किताबों के अंदर पढ़ रहा होता है, देख रहा होता है, ये उसकी जिंदगी का एक मामूल बन जाता है। तो ऐसा शख्स जो है उसको अकल तो ये कहती है कि उसके अंदर तो रूहानी न्यूट्रिएंट्स बहुत कम हो गए हैं, तो जैसे ही उसको कोई मौका दिया जाएगा अपनी रूहानी लेवल को दोबारा इंक्रीज करने का, उसके लेवल को अप करने का, तो ही शुड बी जंपिंग एट इट। उसको तो एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, उसको तो फौरन उसको जंप करके ग्रैब कर लेना चाहिए कि भाई हाँ ये बंदा जो है वो मुझे जिक्र महफिल की तरफ बुला रहा है जहां पे बैठ करके अल्लाह का जिक्र होगा, तो वाकई मेरे जिंदगी में तो इतने सारे गुनाह हैं तो मुझे तो ऐसी महफिल में जरूर जाना चाहिए जहां पर के अल्लाह के जिक्र की बरकात से, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों के अंदर वादा किया है कि जिस महफिल के अंदर अल्लाह का जिक्र किया जाता है वहां पर रहमत के फरिश्ते उतरते हैं। सहाय सत्ता के अंदर कितनी हदीस है इसके बारे में, और अल्लाह ताला उस महफिल के बारे में अपनी मजलिस के अंदर, फरिश्तों की मजलिस के अंदर उस महफिल का तज़किरा करते हैं। तो इस शख्स को जैसे ही किसी ऐसे मौके का मालूम हो उसको तो फौरन कहना चाहिए हाँ मुझे तो वाकई जरूरत है इस चीज की, मैं आऊंगा आपकी महफिल जिक्र के अंदर। या उसको किसी ऐसे दर्स के बारे में पता चले जहां पर के कुरान के मफहूम बताए जा रहे हैं, तो उसको तो फौरन जंप करना चाहिए ऐसी अपॉर्चुनिटी के ऊपर, फौरन जो है वो हाँ मैं आपकी इन्विटेशन, आपका शुक्रिया है कि आपने मुझे जो है वो इस तरफ बुलाया, मैं फौरन आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा आपकी इस गैदरिंग के अंदर। या कोई और इस किस्म की नसीहत की बात की जाए, कोई ऐसी ईमेल कर दी जाए जिसके अंदर किसी का कोई अच्छा आर्टिकल है तौबा के मुतालिक, कोई ऐसा बयान का लिंक है जिसके अंदर के तौबा के बारे में फजाइल जो आए हैं, तौबा की जो तरीका बताया गया है, तौबा की जो अजमत आई है, तौबा की जरूरत है, इसके बारे में किसी शेख ने बहुत अच्छा बयान किया, लोग सुनते हैं सर धुनते हैं, आंसुओं की लड़ियां उनकी आंखों से बह जाती हैं, तो ऐसा बयान जब किसी ऐसे शख्स को भेजा जाए तो उसको तो फौरन सुनना चाहिए कि हाँ मुझे तो तौबा की जरूरत है, मेरे जिंदगी के अंदर तो बहुत सारे गुनाह आ चुके हैं और मैं तो सबसे ज्यादा मुस्तहिक हूं, मुझे तो सबसे ज्यादा इस बात की जरूरत है कि मैं अल्लाह ताला की तरफ वापस पलटूं, तो तौबा की तो मुझे जरूरत है। तो जैसे ही तौबा का कोई बयान आए उसको फौरन सुनना चाहिए, तौबा के बारे में कोई आर्टिकल कोई किताब दी जाए उसको फौरन पढ़नी चाहिए, कोई ऐसी मजलिस का उसको बताया जाए जहां पर कि तौबा के मुतालिक बात होती है उसको फौरन वहां पर जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं, हरगिज ऐसा नहीं होता। जो शख्स जितना ज्यादा गुनाहों की जिंदगी में पड़ता है उतना ज्यादा वो इस किस्म के इन्विटेशन को अवॉइड करता है, उतना ज्यादा जो है वो इस किस्म की डिस्कशन भी अगर कहीं हो रही होगी ना वो रास्ता बदल करके कहीं और चला जाएगा। कोई अगर शख्स उसके दोस्तों के अंदर या उसके रिश्तेदारों के अंदर उसके जाने वालों के अंदर ऐसा होगा जो कि उसको बैठा करके अल्लाह ताला के बारे में कुछ बताए, उसके गुनाहों के ऊपर उसको कुछ याद दहानी करवाए, कुछ नसीहत की बात करे, तो ये बजाय इसके कि उससे जाकर के उससे कुछ और नसीहत की बात पूछे वो उसको टोटली अवॉइड करना शुरू कर देगा, उससे मुलाकात ही खत्म कर देगा। अगर उसको कोई जो है वो इस किस्म के दर्स के अंदर महफिल के अंदर बुला रहा होगा तो वो बिल्कुल उसके ऊपर कान ही नहीं धरेगा। कोई अगर ईमेल इनविटेशन आ जाएगी तो फौरन डिलीट का बटन जो है वो सबसे पहले दबाएगा, इस ईमेल को तो मैं अपने इनबॉक्स में से सबसे पहले निकालूं। हालांकि उस शख्स को तो इन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसको तो इनको फौरन जो है वो लेना चाहिए और फौरन के ऊपर अमल करना चाहिए नसीहत की बातों के ऊपर, लेकिन वही मामला जो कि रुकैया के साथ हुआ कि जितना वो ज्यादा डिहाइड्रेटेड होती जा रही थी उतना ज्यादा उसने अपनी बॉडी की जो नीड्स थी उनसे इनकार करना शुरू कर दिया। सो मच सो कि एक ऐसा वक्त आ गया कि जब उसने बिल्कुल कंप्लीट 100% इनकार कर दिया तब क्या करना पड़ा, उसको हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में ले जाना पड़ा। वहां पे ले आकर के डॉक्टर्स ने उसको फिर जो मुश्किल रास्ता था जो तकलीफ देह रास्ता था उसके जरिए से फिर वही जो नेसेसरी न्यूट्रंस उसकी बॉडी के लिए थे वो दाखिल किए, और जब वो मुश्किल रास्ते से वो गुजरी उसको तकलीफें हुई उसको उसको बिस्तर के बेड के साथ लग करके 2.5-3 घंटा रहना पड़ा तो उसके बाद क्या नतीजा निकला, फिर उसकी जो है वो भूख जाग उठी, उसके केमिकल डिसबैलेंस तो जो था वो नॉर्मल आ गया और फिर उसने पीना भी शुरू कर दिया और उसने खाना भी शुरू कर दिया। विद इन 1-1.5 days शी वॉज बैक टू द सेम एक्टिव लाइफ स्टाइल विच वॉज लीडिंग बिफोर, लेकिन तकलीफों से गुजरना पड़ा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए ये चंद घंटों की ट्रीटमेंट जो है वो भी काफी नहीं होती, तो जब उनके टेस्ट कराए जाते हैं और टेस्ट के रिजल्ट्स जो है वो एबनॉर्मल आते हैं तो फिर डॉक्टर्स ये फैसला करते हैं कि इनको तो हॉस्पिटल में एडमिट ही करना पड़ेगा। फिर वो एडमिट किए जाते हैं, फिर वो आईवी जो है वो मुस्तकिल उनके साथ लगी रहती है, 2 दिन लगी रहेगी, 1 दिन लगी रहेगी, और उनको जो है वो और भी जो है वो कड़वी कसेली मेडिसिन खानी पड़ेंगी, कुछ और भी जो है वो टेस्ट कराने पड़ेंगे और पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट करनी पड़े। तो अगर उनकी बीमारी का ऐसा दर्जा था जो कि इन चंद दिनों की हॉस्पिटल ट्रीटमेंट से दूर हो जाएगा तो फिर उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और ये घर वापस जाएंगे और फिर नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हर कोई ऐसा भी नहीं होता, कुछ लोग इतने ज्यादा बीमार हो जाते हैं कि वो चंद दिन की हॉस्पिटल ट्रीटमेंट से भी सही नहीं होते, हत्ता के वो मौत के मुंह में चले जाते हैं, हत्ता के वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। रूहानी दुनिया में इसी चीज को रूहानी मौत कहा जाता है कि किसी की अगर जिंदगी का हाल ये था कि उसको चंद घंटों की या चंद दिनों की मुसीबतों के जरिए परेशानियों के जरिए से अल्लाह ताला याद आ जाता है तो फिर तो वो बैक टू नॉर्मल लाइफ चला जाता है, लेकिन अगर वो भी उसके लिए काफी नहीं होते तो उसकी फिर ये जो तज़किए का प्रोसेस होता है, ये जो द हार्ड वे वाला तज़किया है ना कि अपनी मर्जी से तो कबूल नहीं किया, जब इनवाइट किया जा रहा था उस वक्त तो कबूल ना किया, अब जो है पकड़ करके मुसीबत के ऐसे चक्कर के अंदर फंसा दिया गया कि अब जो है कोई चारा ही नहीं रहा कि अल्लाह ताला की तरफ पलटना ही पड़ेगा। और अल्लाह ताला की तरफ बंदा कैसे पलटता है, इस दुनिया में तो अल्लाह ताला नजर नहीं आते, इस दुनिया में तो अल्लाह ताला आपके सामने आके खड़े नहीं होंगे कि भई आपकी तरफ आप उनकी तरफ पलट जाएं। अल्लाह ताला की तरफ पलटने का मतलब वही होता है कि अल्लाह ताला ने जो अपने एजेंट्स अपने जो बंदे इस दुनिया के अंदर मुतय्यन किए हैं जो कि आपको नसीहत के रास्ते की तरफ बुला रहे थे उनसे रुजू करना पड़ता है, उनके पास जाना पड़ता है, उनसे बातों को समझना पड़ता है, उनसे बातों को सीखना पड़ता है, अल्लाह ताला के बारे में उनसे पूछना पड़ता है। लेकिन जो इंसान गुनाह की जिंदगी में पड़ जाता है उसको ये बातें समझ में नहीं आती। तो अगर हम आसान रास्ता चाहते हैं तो हमें इन नसीहतों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये उन चंद मिसालों में से एक मिसाल है जो कि इस दुनिया के अंदर हमें बारहा नजर आती हैं, कि होना लॉजिकली स्पीकिंग कुछ चाहिए था लेकिन हो कुछ और रहा होता है। यानी लॉजिकली तो ये बात आती थी ना कि भाई जिसके पास जिस चीज की कमी है उसको उस चीज को ज्यादा जल्दी अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा था कि जितनी ज्यादा कमी हो रही थी उतना ही ज्यादा उससे पहलू तही की जा रही होती है। जितनी ज्यादा जिस चीज की जरूरत है उतना ही उससे ज्यादा पहलू तही करने की जरूरत उससे ज्यादा पहलू तही की जा रही होती है। और ये फिजिकल वर्ल्ड के अंदर भी हो रहा होता है और ये जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हो रहा होता है। फिजिकली तौर पर जो बीमार होता है वो न्यूट्रिशियस चीजों को अवॉइड कर रहा होता है और वो उसको अच्छी नहीं लग रही होती, और जो स्पिरिचुअली तौर पर बीमार होता है वो स्पिरिचुअल न्यूट्रिएंट्स को अवॉइड कर रहा होता है, नसीहत के मौकों से हट के निकल जाता है। दूसरे मौाकों के ऊपर भी ये प्रिंसिपल जो है वो बहुत अप्लाई होता है। मिसाल के तौर पर जब कोई खैर की बात की दावत देना शुरू करता है, जब कोई खैर की बात की दावत देना शुरू करता है तो लॉजिकली स्पीकिंग तो होना ये चाहिए कि जितने लोग उसके जितना ज्यादा करीब हैं वो सारे के सारे उसकी इस खैर की दावत को कबूल कर लें, और जितने लोग जो हैं वो दूर हैं वो बाद में देर से आकर के उसकी दावत को कबूल करें। लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ लोग तो कबूल कर लेते हैं लेकिन अक्सर करीबी लोग जो हैं वो कबूल करने से इनकार कर देते हैं, और दूर के लोग आकर के उस खैर की दावत को कबूल करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल आकाए दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर की दावत देनी शुरू करी तो आपके अपने कबीले के आपके अपने खानदान के जो लोग थे उनमें से बहुत कम लोगों ने आपकी दावत को कबूल किया। आपकी बीवी ने कबूल किया, आपके सबसे करीबी दोस्त ने कबूल किया, लेकिन रिश्तेदारों में से खेश कबीले में से बहुत ही ज्यादा कम लोगों ने कबूल किया। हत्ता के 10 साल गुजर गए, 12 साल 13 साल गुजर गए, और उसके बाद फिर बिल्कुल कई 100 किलोमीटर दूर एक कस्बे के लोगों ने आकर के एक बड़ी तादाद में आपकी बात को कबूल किया। और इन 10-12 सालों के अंदर भी जो है वो दूर दूर से इक्का दुक्का लोग जो है वो आते रहे और आपकी बात को कबूल करते रहे। लेकिन बिलाआखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से हिजरत करनी पड़ी, और हिजरत करने के बाद भी उन लोगों ने आपको चैन से नहीं बैठने दिया, हत्ता के उन्होंने बाकायदा लश्कर कशी करी और कई जंगें उन लोगों के साथ लड़नी पड़ी। अब एक इलाके के लोगों के साथ जंग लड़ने का मतलब यह है कि उस इलाके के इतनी बड़ी मेजोरिटी में तो लोग थे ना आपके खिलाफ कि वो बाकायदा एक लश्कर लेकर के आपके खिलाफ आते थे, और जिन लोगों ने आपकी मदद करी थी उन लोगों से और आपके खिलाफ जो है वो बाकायदा लड़ाई लड़ते थे। तो लॉजिकली स्पीकिंग तो ये होना चाहिए था कि भाई जितने अच्छी दावत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से ज्यादा अच्छी और कौन सी दावत हो सकती है, उसकी सेहत के अंदर, उसकी पाकीजगी के अंदर, उसकी जरूरत के अंदर कोई शक भी नहीं कर सकता, कोई मोमिन जो है उसकी अच्छाई से जो है वो इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उन सब चीजों के बावजूद आपके अपने कबीले ने आपको रद्द कर दिया, हत्ता के एक ऐसा मुकाम आया कि जबकि बहुत सारे कबीले के लोग जो है वो जहन्नुम रसीद भी हो गए, फिर उसके बाद जो बचे उन्होंने बिल आखिर फतेह मक्का के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल किया। तो ये भी एक दुनिया के अंदर अगर आप अपनी अकल को लगा करके सोचें तो बात तो ये होनी चाहिए थी कि जी करीब के लोगों को तो पहले कबूल करना चाहिए था और दूर के लोगों को बाद में कबूल करना चाहिए था, लेकिन होता ऐसा नहीं है। एक और मिसाल इसकी ये है कि भाई बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास अपनी जिंदगी के अंदर बहुत वक्त होता है, काफी उनकी जिंदगी के अंदर फारिग वक्त होता है। मर्द हैं तो उनकी जॉब इतनी ज्यादा डिमांडिंग नहीं है, जॉब के ऊपर भी जो है वो एंटरटेनमेंट के सामान मुहैया किए हुए होते हैं, और घर आने के बाद फिर घंटों टीवी के ऊपर बैठते हैं, टीवी के सामने बैठते हैं, कोई स्पोर्ट्स देखता है, कोई सिटकॉम्स देखता है, कोई जो है वो कॉमेडी शोज देखता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, अपने फोन जो स्मार्टफोन्स आजकल खरीदे हुए हैं तो स्मार्टफोन्स के ऊपर लोग लगे हुए हैं, बस उनको देखो ऐसे मगन होते हैं अपने फोन के अंदर कि पता नहीं कितना टाइम गुजर जाता है। यानी लोगों के पास, मर्दों के पास बहुत टाइम होता है, और औरतों के पास तो माशाल्लाह अगर जॉब नहीं है और अगर कोई छोटे बच्चे नहीं है घर के अंदर तो फिर तो टाइम ही टाइम होता है, घंटों उनके पास वक्त होता है, सारा दिन समझ में ही नहीं आता कि क्या करें। ऐसी औरतें बहुत बड़ी तादाद में होती हैं, खुसूसन हमारे मुआशरे के अंदर। वेस्ट के अंदर तो ऐसा नहीं होता कि वेस्ट के अंदर तो औरतों मर्दों की इक्वालिटी के तहत उन्होंने औरतों को भी काम की भट्टी के अंदर ऐसा झोंका है कि औरतों के पास भी कोई टाइम नहीं होता, लेकिन हमारे यहां अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह औरतें जो है वो घर की जीनत होती हैं तो उनके पास टाइम होता है। मर्दों के पास भी जैसा कि आपने सुना घंटों टीवी के सामने बैठ जाते हैं, यानी इतने घंटे तो होते हैं ना कि वो स्पोर्ट्स मैच देख सकें, अपने दोस्तों के साथ जो है वो गलियों की खाक छान सकें, और बैठ करके रेस्टोरेंट्स के अंदर लंबी लंबी जो है वो सियासत के ऊपर और स्पोर्ट्स के ऊपर बहसें कर सकें। तो टाइम जो है वो बहुत सारे लोगों के पास बहुत होता है, ऐसा नहीं है कि आज के दौर में जो है वो बस टाइम है ही नहीं किसी के पास, बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत टाइम है, लेकिन जहां कहीं दीन के काम के अंदर वक्त देने की जरूरत पड़ती है, दीन के काम के लिए, खैर के काम के लिए जब वक्त की जरूरत पड़ती है तो अकल तो ये कहती है कि भाई जिनके पास ज्यादा वक्त था उनको अपना वक्त देना चाहिए, और जिनके पास कम वक्त है वो जाहिर है कम वक्त दे पाएंगे, लेकिन होता इसके बिल्कुल बरअक्स है, होता इसके बिल्कुल बरअक्स है। जिनके पास कम वक्त होता है देखा यह गया कि वो दीन के कामों के अंदर अपना वक्त ज्यादा लगा रहे होते हैं, जितना उनके पास अवेलेबल है वो भी लगा रहे होते हैं, जितना नहीं अवेलेबल है उसको भी जो है वो अपनी सोचों के साथ दीन के काम के लिए लगा रहे होते हैं, और जिनके पास वक्त ही वक्त है वो दीन के काम की तरफ तवज्जो ही नहीं करते, उस तरफ आने की उनको तौफीक ही नहीं होती, तो अकल के बिल्कुल खिलाफ रिएक्शन होता है। एक और मिसाल के तौर मिसाल ले लें कि भाई माशाल्लाह लोगों के पास बहुत अल्लाह ताला ने माल दिया है, आज के दौर में मुसलमानों में ऐसे लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं जिनके पास कोई इंतहा ही नहीं माल की। अभी कुछ दिनों पहले एक शह सुर्खी किसी अखबार में पड़ी थी कि इतने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो इतने चंद मुसलमानों के हाथों के अंदर हैं, चंद मुसलमानों के हाथों में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो हैं, लेकिन जब दीन के कामों के अंदर पैसा लगाने की बात आती है, जब दीन के कामों में पैसा लगाने की बात आती है तो देखा यह गया कि जिनके पास कम होता है वो अपना सारा लगा देते हैं, और जिनके पास इतना है कि कोई शुमार ही नहीं उसका उनको तौफीक नहीं मिलती, उनको तौफीक नहीं मिलती। इसी के ऊपर जाहिज के जहन में एक बात आई कि माशाल्लाह इस दुनिया में ऐसे मुसलमान भी आज हैं कि अगर वो हज उमरा हर हफ्ते करना चाहें उमरा तो अपने जाती जहाज के ऊपर वो आकर के एयरपोर्ट पे लैंड कर सकते हैं, वो हर हफ्ते जो है वो बेहतरीन आसाइशों के साथ उमरा कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको सारी जिंदगी तौफीक नहीं मिलती आने की। लेकिन पिछले दिनों उमरे पे गए हुए थे तो वहां पर एक ऐसी बूढ़ी औरत को देखा, इतनी बूढ़ी थी और इतनी उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे इंसान खड़ा होता है ना स्ट्रेट होता है, वो बिल्कुल 90 डिग्रीज के ऊपर उसकी बॉडी जो है वो टिल्ट हुई हुई थी, बिल्कुल 90 डिग्रीज पे उसकी बॉडी टिल्ट हुई हुई थी। उसने दो कार्ट्स को संभाला हुआ था, एक कार्ट को वो पुश कर रही थी और एक कार्ट को वो पुल कर रही थी, और उनके अंदर उसका सामान रखा हुआ था। ये वो औरत थी, और बाबे अब्दुल अजीज के सामने वो नजर आई। ये औरत इस हालत के अंदर अल्लाह के घर पहुंच गई। एक बूढ़े अफगान है गालिबन, वो अक्सर नजर आते हैं, शायद हजरत ने अपने बयानात में भी उन्हीं का तذکرہ किया है कि अजीब सी उनकी एक व्हील चेयर है, जिस तरह से कि हमारे इलाकों के रहने वाले पठानों की गाड़ियां होती हैं, उनके ऊपर रंग बिरंगी चीजें लगी होती हैं, तो वो एक अजीब सी उनकी व्हील चेयर है, वो उसको खुद ही अपने हाथ की उनके हाथ में कंट्रोल है, वो लिवर को हिलाते रहते हैं और वो व्हील चेयर चलती रहती है और वो उसके अंदर बैठ के तवाफ करते रहते हैं, तवाफ करते रहते हैं, तवाफ करते रहते हैं। एक से ज्यादा मरतबा अभी कुछ दिन पहले भी नजर आए, उससे पहले भी वो सारे उसको नजर आए थे, और हजरत ने गालबन उनका इन्हीं का तस्करा भी किया है कि वो बस वहीं रहते हैं, तवाफ ही करते रहते हैं। तो बात क्या समझ में आती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना वक्त है, ये सारी चीजें जो है वो अल्लाह ताला की तौफीक पे डिपेंड करती हैं। अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक ये जिसको मिलती है, उसके पास पैसे हों या पैसे ना हों, उसके पास वक्त हो या उसके पास वक्त ना हो, उसको फिर भी नेकी की तौफीक मिल जाती है। और जिसको अल्लाह ताला की तौफीक, अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक ना मिले, वो फिर बहाने ही बनाता रहता है। उसके पास ये चीजें जो है उनकी कोई हैसियत नहीं होती कि मेरे पास वक्त नहीं था या मेरे पास पैसे नहीं थे या मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे या मेरे पास जो है वो मदद करने वाले लोग नहीं थे। अल्लाह ताला की तौफीक जिसको मिल जाती है, वो नेकी के कामों में, खैर के कामों के अंदर लग जाता है। हमने तो देखा कि जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिसके घर में ज्यादा उसकी मसरूफियात हैं, जिसका जॉब भी जो है वो ज्यादा डिमांडिंग है, ऐसे ही लोग जो है वो दीन के कामों के अंदर और भी ज्यादा होते हैं, दीन का इल्म भी हासिल कर रहे हैं। हमारे तो एक दोस्त हैं, उन्होंने इन हालात के अंदर जॉब के साथ, बच्चों के साथ, उन्होंने पूरा कुरान पाक हिफ्ज किया। पूरा कुरान पाक हिफ्ज करने के बाद उन्होंने आलिम कोर्स की किताबें पढ़नी शुरू करी और आज जो है माशाल्लाह वो सातवें साल मिशकात शरीफ और हिदायत शरीफ की किताबें पढ़ रहे हैं। जॉब भी साथ चल रही है, तीन चार बच्चे भी घर के अंदर हैं, वालदैन भी साथ रहते हैं, उनकी भी जाहिर जिम्मेदारियां होती हैं, उसके अलावा और मुआशरे की जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, कुरान पाक 35 साल की उम्र में जाकर के हिफ्ज किया और फिर आलिम कोर्स की किताबें पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ हकीकतें हैं जो कि हमारी आंखें खोलने के लिए काफी होती हैं या होनी चाहिए। किसी ने इसी को शेर के अंदर बयान किया कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। ये मकतबा इश्क के अंदाज निराले देखे, ये मकतबा इश्क की बातें हैं असल में। मकतबा इश्क के अंदाज निराले देखे, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो भाई जो जितना अपने दिल के अंदर अल्लाह ताला की तरफ लौटने का, अल्लाह ताला की तरफ पहुंचने की आरजू रखता है ना, उसी को फिर अल्लाह ताला नेकियों की तौफीक भी उतनी ही ज्यादा देते हैं। और जो गुनाहों की जिंदगी के अंदर पड़ा रहता है और अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले मैसेजेस को, चाहे वो किसी बंदे की शक्ल में हो, चाहे वो किसी ईमेल की शक्ल में हो, चाहे वो किसी एसएमएस की शक्ल में हो, भाई देखें एक बात जहन में आती है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में उन लोगों का तस्करा फरमाते हैं जो कि जहन्नुम रसीद हो जाएंगे। तो उनसे जो है वो फरिश्ते पूछेंगे कि भाई तुम्हारे पास क्या कोई रसूल नहीं आया था, क्या तुम्हारे पास कोई रसूल नहीं आया था तो तुमने उसकी बात मानी होती। वो कहेंगे नहीं, हमारे पास तो रसूल आया था लेकिन हमारे अंदर अकल की रत्ती नहीं थी कि हम उसकी बात को मानते। अब हम जब ये आयतें पढ़ते हैं ना, तो हम शायद ये समझते हैं कि ये आयतें जो हैं वो उस वक्त ही तक के लिए थीं जब तक के इस दुनिया के अंदर रसूल आते थे, और वो तो 1400 साल 1434 ईयर्स पहले ये बात खत्म, यानी 1434 ईयर्स पहले जब हिजरत हुई, फिर उसके चंद साल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो जब तक रसूल इस दुनिया में आते थे ना, तो ये आयतें उस जमाने के लिए हैं। उसके बाद इन आयतों की रेलेवेंस खत्म हो गई, इसलिए कि रसूल ही आने खत्म हो गए। तो अब हमारे साथ ये मामला कयामत के दिन पेश नहीं आएगा कि हमसे कोई नहीं पूछ सकता कि भाई क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आया था और तुमने जो है वो गुनाहों की जिंदगी क्यों गुजारी, तुमने अपनी जिंदगी को तब्दील क्यों नहीं किया, तौबा क्यों नहीं करी। हमसे कोई कैसे पूछ सकता है, हमारे पास तो रसूल आए ही नहीं थे, हमारे पास तो ना ईसा अलैहि सलाम आए, ना इब्राहिम अलैहि सलाम आए, ना जो नूह अलैहि सलाम आए, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि ये कहानियां जो है वो पिछले लोगों के लिए हैं, और कयामत के दिन जब ये सब कुछ होगा ना कि किसी से पूछा जा रहा होगा, वो जो है अफसोस कर रहा होगा कि मेरे पास आया था मैंने बात नहीं मानी, तो हम बैठे ना दीवार के साथ टेक लगा के खड़े होंगे और हम तमाशा देख रहे होंगे इन लोगों का कि जी हाँ हमने कुरान में ये चीजें पढ़ी थी और देखो हमारे सामने ये तमाशा हो रहा है, बात बिल्कुल सच थी। और हमें जो है ना हमें इसके अंदर से एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, हम तमाशा देखेंगे, थोड़ी देर के बाद जब ये तमाशा रैप अप हो जाएगा फिर हमसे कहा जाएगा कि आइए आप जन्नत में तशरीफ ले जाइए। तो हम यही समझते हैं क्योंकि हमारे पास तो रसूल आए नहीं तो ये आयतें हम पर अप्लाई नहीं हो सकती। लेकिन क्या वाकई इस बात में तो अगर हम अपनी अकल भी इस्तेमाल कर लें तो क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि जी इतने लाखों करोड़ों, अच्छा ये रसूल हम अपने लिए क्यों सोचते हैं, काफिरों के पास भी तो रसूल नहीं आ रहे, और हम ये एज्यूम किए होते हैं कि हम चूंकि मुसलमान हैं तो हमें जन्नत में इन्विटेशन देकर के डाल दिया जाएगा, काफिरों को लेकिन जहन्नम में डाला जाएगा, यहूदियों को और जो ईसाई हैं या जो हिंदू हैं उनको जहन्नम में डाला जाए। भाई क्यों, रसूल तो उनके पास भी नहीं आया था, है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके पास भी नहीं आया ना, जो आज के काफिर हैं, आज से 1000 साल पहले जो काफिर गुजरे थे और 10,000 साल बाद जो काफिर आएंगे उनके पास भी तो रसूल नहीं आया, तो उनको क्यों जहन्नम में डाला जाएगा, उन्होंने क्या कसूर कर दिया भाई। तो क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। रसूल तो नहीं आएंगे लेकिन रसूल का पैगाम जो है वो हम तक भी पहुंचाया जाएगा और हम तक पहुंचता है और उन काफिरों तक भी पहुंचाया जाता है, उन तक पहुंचता है। अल्लाह ताला किसी ऐसे शख्स को अजाब नहीं देंगे जिस तक जो है वो पैगाम पहुंचा ही नहीं। अब किस फॉर्म में पहुंचा, किस शक्ल में पहुंचा, किस सूरत में पहुंचा, किस राब्ते से पहुंचा, किस सबब से पहुंचा, ये हर एक के लिए डिफरेंट होता है। किसी के पास जो है वो तबलीगी जमात की शक्ल में पहुंच रहा है, किसी के पास जो है वो एक आलिम की शक्ल में पहुंच रहा है, किसी के पास जो है वो एक सूफी शेख की शक्ल में पहुंच रहा है, किसी के पास जो है वो कोई बंदा नहीं पहुंच रहा लेकिन उसके पास जो है वो एक खत की शक्ल में पहुंच रहा है, किसी के पास जो है वो एक मैगजीन के आर्टिकल की शक्ल में पहुंच रहा है, किसी के पास जो है वो एक टीवी के प्रोग्राम की शक्ल में पहुंच रहा है, किसी के पास जो है वो एक SMS मैसेज के जरिए से पहुंच रहा है, किसी के पास जो है वो एक ईमेल मैसेज के जरिए से पहुंच रहा है, किसी के पास जो है वो ऐसे ही कोई वाकया जो उसके इर्द गिर्द रूनमा हुआ उस वाकये से उसको ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं जिसके जरिए से उसको नेकी की तरफ बुलाया जा रहा है, और उसको जहन्नम में डाला ही इसलिए जाएगा क्योंकि ये पैगाम जब उस तक पहुंचा था चाहे किसी भी जरिए से पहुंचा, अल्लाह ताला ने पहुंचवाया, उसने पहुंचने के बाद उस पैगाम को रिजेक्ट कर दिया, उस पैगाम से इनकार कर दिया। अब इस इनकार की वजह से उसको फिर सजा दी जाएगी। पैगाम पहुंचाना अल्लाह का, देखिए हमारा ठीक है बहैसियत उम्मत हमारा काम है कि जी तबलीग करना, हमारा काम है दीन के काम को फैलाना, लेकिन हम एक सर्टन लेवल तक ही कर सकते हैं यह काम, दुनिया के एक एक बंदे तक हम पैगाम नहीं पहुंचा सकते। लेकिन अल्लाह ताला जो कि उनका मालिक है, जो कि खालिक है, अल्लाह ताला तो जानता है ना कि मेरे बंदे किस हालात में रहते हैं। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि जी एक नॉन मुस्लिम कंट्री के एक छोटे से गांव के अंदर रहने वाला एक बूढ़ा आदमी जिसको कि कभी भी दीन इस्लाम की दावत नहीं दी गई वो क्यों जहन्नुम में डाला जाएगा। ओ भाई हमने को थोड़ी जहन्नुम में डालना है उसको यार, तुम उससे क्यों पूछ रहे हो कि क्यों जहन्नुम में डाला जाएगा, मैंने कहा है कि उसको जहन्नुम में डाला जाएगा, मैंने तो नहीं कहा, ना किसी आलिम की ये मजाल है कि वो बोले कि उस बंदे को जहन्नुम में डाला जाएगा, कोई आलिम ये नहीं कह सकता कि उसको जहन्नुम में डाला जाएगा। जहन्नुम में डालना ना डालना ये हमारा काम नहीं है, ये काम है अल्लाह ताला का, और अल्लाह ताला जो डालने या ना डालने वाले ना अल्लाह ताला को मालूम है कि मेरे इस बंदे को कब किस तरीके से मेरा पैगाम पहुंचा और उसने उसको मना कर दिया और उसने उसको डिनाई कर दिया, उसने उससे इनकार कर दिया। तो अल्लाह ताला इसका फैसला करने वाले हैं, अल्लाह ताला जानते हैं कि किस बंदे के साथ क्या मामला करना है। एक और बात खत्म करने के लिए एक आखिरी मिसाल कि जो रिएक्शन होना चाहिए वो रिएक्शन नहीं होता, लेकिन ये अब एक एक पॉजिटिव तरीके पर। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों का जिक्र फरमाते हैं कि वो ऐसे मेरे बंदे हैं जो कि हर हाल में मेरा जिक्र करते हैं। अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, वो खड़े भी मेरा जिक्र करते हैं, वो बैठे भी मेरा जिक्र करते हैं, हत्ता कि जब वो अपने पहलुओं के ऊपर लेटे हुए होते हैं वो उस हालत में भी मेरा जिक्र करते हैं। और इंसान तीन ही हालतों में हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि हर हाल में वो अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, हर वक्त अल्लाह ताला की याद में रहते हैं। और खाली ये नहीं कि अल्लाह ताला की याद में रहते हैं, बल्कि यतफक्करून फी खल्क السماوات والارض, बल्कि वो जो है वो जो कुछ अल्लाह ताला ने समावात के अंदर और अर्थ के अंदर जमीन के अंदर पैदा फरमाया वो उसके अंदर फिक्र भी करते हैं, वो सोचो विचार भी करते हैं, वो उन चीजों के ऊपर गौर भी करते हैं। यतफक्करूना फी खल्क السماوات والارض, और ये वो लोग हैं जो कहते हैं इसके फौरन बाद रब्बना मा खलकता हादा बातिला, ए हमारे परवरदिगार आपने जो कुछ भी बनाया आपने कुछ भी जो है वो ऐसी बेकार में फालतू में नहीं बनाया। मा खलकता हादा बातिला, हर चीज जो है वो आपने किसी न किसी मकसद से बनाई, किसी न किसी हिकमत के साथ बनाई। तो ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला की मखलूक के अंदर, अल्लाह ताला की कायनात के अंदर यानी समावात वल अर्द, इन चीजों के अंदर वो गौर व फिक्र करने वाले लोग हैं। यानी आज की जुबान में अगर हम उनको कहें तो वो साइंटिस्ट किस्म के लोग होते हैं, वो रिसर्चर किस्म के लोग होते हैं, जिनकी पहुंच जो है वो इन चीजों तक पहुंचती है और इतनी गहराई में जाकर के वो अल्लाह ताला की मखलूक को देखते हैं, समझते हैं। तो इसका एक लॉजिकल रिएक्शन तो ये होना चाहिए था कि वो जो है वो इस मखलूक के अंदर गौर व फिक्र करते करते जो है वो मखलूक के अंदर ही गुम हो जाए, या ये कि वो अल्लाह ताला की अजमत ही बयान करते रहें। और कुरान पाक में जब इन लोगों का जिक्र आया तो फिर इस लोगों की तरफ से फिर अल्लाह ताला को और बातें करनी चाहिए थी कि भाई ये लोग जो है वो ऐसा भी करते हैं और अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हैं और ये अल्लाह ताला की मखलूक के बारे में जो है वो और गहराई के अंदर उतरते हैं और उनकी जो बातें हैं उनके मतलब कुछ तफसीलें आनी चाहिए थी। लेकिन कुरान पाक ने ये बात बयान करने के बाद, इन रिजाल का तस्करा करने के बाद जो कि हर वक्त अल्लाह ताला की याद में महव रहते हैं और अल्लाह ताला की मखलूक के अंदर गौर व फिक्र और तदब्बुर करते हैं, कुरान पाक में अल्लाह ताला इन लोगों के बारे में अगले ही आयत के अंदर क्या फरमा रहे हैं, रब्बना मा खलकता हादा बातिलन सुबहानका, ऐ अल्लाह आप पाक हैं हर किस्म की कमजोरी से, हर किस्म की बुराई से, हर किस्म की कमी बेशी से आप बिल्कुल मुबर्रा हैं, आपसे कोई गलती नहीं हो सकती, आपके अंदर बुराई की नाम की कोई चीज नहीं हो सकती। सुभानका फकिना अज़ाब अन्नार, ऐ अल्लाह आप हमें जो है वो आग के अजाब से बचा दीजिए, ऐ अल्लाह आप हमारी जो है वो आग के अजाब से खुलासी फरमा दीजिए। तो क्या अजीब बात जहन में बात सामने आती है कि ऐसे लोग जो है वो बजाय इसके कि अल्लाह ताला की मखलूक ही के बारे में और बातें करते रहते, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते, इन लोगों के अंदर रिएक्शन क्या होता है बिल्कुल ऐसा जिसकी तरफ इंसान का जहन ना जाए। एक आम आदमी का जहन जो है वो उस तरफ नहीं जा सकता कि वो बजाय इसके कि उस डायरेक्शन में ज्यादा जाने के, उनका इमीडिएट रिएक्शन ये होता है कि फौरन अपनी तरफ उनकी नजर आ जाती है और अपनी बुराइयां, अपनी कमजोरियां और अपना असल अहवाल जो है वो उनके सामने फौरन खुल जाता है और वो फौरन अल्लाह ताला से माफी तलाफी करना शुरू कर देता है। फौरन कहता है कि ऐ अल्लाह ये आपकी अजमत, इतने अजीम परवरदिगार, इतने अजीम मालिक, इतने ज्यादा हसीन परवरदिगार की मैं नाफरमानी करता फिर रहा हूं, मेरी जिंदगी देखो, अल्लाह ताला की अजमत देखो, क्या जिंदगी में गुजारता फिर रहा हूं, मैंने तो अपने ऊपर जहन्नुम की आग को वाजिब कर लिया है। तो फौरन उनको फिक्र होती है कि कहीं मुझे जहन्नुम में ना फेंक दिया जाए, अल्लाह ताला से माफी तलाफी करना शुरू कर देते हैं। फौरन कहते हैं या अल्लाह हमें जहन्नुम के अजाब से खुलासी दिला दीजिए, ऐ अल्लाह हमें जहन्नुम के अजाब से बचा लीजिए। तो क्या बात सामने आती है कि साइंटिस्ट किस्म के लोग जब वो ईमान की नजरों से अल्लाह ताला की मखलूक को देखते हैं तो उनके दिल में अपने बारे में अजमत नहीं आती, कोई बड़ाई नहीं आती, अपने आप से वो खुश नहीं होते। कि वो अपनी अपनी तरफ जो है वो देखना शुरू कर दें कि मैंने कितना बड़ा काम किया कि मैंने अल्लाह ताला की मखलूक को पहचान लिया, मैंने अल्लाह ताला को पहचान लिया, बल्कि इसका रिएक्शन उनके अंदर क्या होता है, वो ये होता है कि उनको अपनी कमी बेशी, अपनी बुराई नजर आनी शुरू हो जाती है, अपनी हकीकत उनके सामने खुल जाती है और वो फौरन अल्लाह ताला से जो है वो आग के अजाब से पनाह मांगना शुरू कर देते हैं कि ऐ अल्लाह यकीनन मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, मैंने जो है वो इतने गुनाहों वाली जिंदगी गुजारी, ऐ अल्लाह कहीं मेरे गुनाहों की वजह से आप मुझे जहन्नुम में ना डाल दें। तो इस वजह से एक मोमिन के अंदर जो रिएक्शन होता है वो एक आम आदमी के बदले में बिल्कुल डिफरेंट होता है। एक आम वर्ल्ड व्यू जो है वो ये है कि नॉलेज इज पावर, कि जितनी इंसान के अंदर नॉलेज आती है उतना ज्यादा वो अपने आप को पावरफुल समझना शुरू हो जाता है। इसलिए कि गैर मुस्लिम तो यही करता है ना, एक गैर मोमिन तो यही करता है कि जितना उसके पास नॉलेज आई वो उस नॉलेज को यूज करके अपने रिसोर्सेज बढ़ाता है और दूसरों को एक्सप्लॉइट करता है, तो वो पावरफुल हो जाता है ताकि वो अपने नॉलेज के जरिए से दूसरों को एक्सप्लॉइट कर सके। लेकिन एक मोमिन हरगिज ये नहीं कर सकता, अपने नॉलेज के नतीजे में उसको जो है वो अपनी बुराइयां नजर आनी शुरू हो जाती हैं, अपनी कमी जो है, अपनी कोताही जो है उसके सामने और खुलकर नुमाया हो जाती है और वो अल्लाह ताला से माफी मांगने लगता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हकीकत पहचानने की तौफीक अता फरमाए। अगर हम गुनाहों की जिंदगी में पड़े हुए हैं तो हमारी तरफ जो भी नसीहत का मौका अल्लाह ताला की तरफ से पहुंचाया जाता है उसको फौरन जो है वो हासिल करने की कोशिश करें, फौरन उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला की तरफ तौबा की नीयत के साथ रुजू करें और अपने गुनाहों से माफी मांगें। अल्लाह ताला हमारे सब गुनाहों को माफ फरमाए। व आखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर के लिए सुना गया उसको दिल के अंदर जखीरा बना लें, आंखों को बंद करें, कर लें, सर को झुका लें, दुनिया जो कुछ दुनिया में है उसे हटकट कर अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में डूब जाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ कर लीजिए सुभान रब्बिल अला बहाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलि सल्लम। रब्बना ज़लमना अन्फुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तु'ाख़िज़ना इन नसीना अव अख़तअना। ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اے کریم آقا ہم تیرا عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر نیک بنا، تمام گناہوں کو معاف فرما، جو گناہ کر کے بھول گئے ان کو بھی معاف فرما، جو دن میں کیے ان کو معاف فرما، جو راتوں میں کیے ان کو معاف فرما، جو جان بوجھ کے کیے ان کو معاف فرما، جو بلا ارادہ ہو گئے ان کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ نیک بننا چاہتے ہیں بن نہیں پاتے، اے اللہ نفس و شیطان کے بہکاؤں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا، نفس کو نفس مطمئنہ بنا، اے اللہ نفس کے بہکاؤں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ شیطان سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ شیطان سے پناہ عطا فرما، اے اللہ اپنی حفاظت میں ہمیں اور ہمارے اہل و عیال، گھر بار اور عزیز و اقارب کو اپنی حفاظت عطا فرما، اے اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما، اپنے سے محبت کرنے والوں کی محبت نصیب فرما، ان کاموں کی محبت نصیب فرما جو آپ کی محبت تک پہنچا دینے والے ہیں، اپنے دین کی سمجھ نصیب فرما، اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے دین کے محنت کے لیے قبول فرما، کثرت سے اپنا ذکر کرنا ہمارے لیے ممکن بنا، اپنا استحضار نصیب فرما، ہر وقت اپنا دھیان نصیب فرما، اے اللہ ذکر کرنے والا دل نصیب فرما، شکر کرنے والی زبان نصیب فرما، اے اللہ اپنے دین کی محنت کے لیے تھکا دینے تھک جانے والا بدن نصیب فرما، اے اللہ تھک تھک کر اپنی دین کی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ تھک تھک کر اپنے دین کی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ محنت کر 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 تھکنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس دنیا والی زندگی کو ہمارے لیے محنت والی زندگی بنا، اور اے اللہ ہماری قبروں کو ہمارے لیے آرام والی جگہ بنا، اور اے اللہ قیامت کے دن کو ہمارے لیے انعام والی جگہ بنا، اے اللہ ہمارے آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا، آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر بنا، اے اللہ ہمیں کلمے پر موت نصیب فرما، اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، اے اللہ ہم سے تو چھوٹی چیزوں کی حفاظت نہیں ہو پاتی، اے اللہ ایمان جیسی چیز کی حفاظت کیسے کر پائیں گے، اے اللہ آپ کی مدد درکار ہے، اے اللہ ہمارے اولاد کی، اور اے اللہ جتنے بھی عزیز و اقارب دوست رشتہ دار ہیں، اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ پوری امت کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جس بھی پریشانی کے اندر ہم انفرادی طور پر مبتلا ہیں یا اجتماعی طور پر مبتلا ہیں، اے اللہ وہ اور کچھ نہیں لیکن ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ، اے اللہ ہمارے اعمال ہی اتنے خراب ہو گئے کہ ہم جو ہیں وہ سیدھے راستے سے آپ کی اطاعت والی زندگی کی طرف آتے ہی نہیں، تو اے اللہ پھر ٹیڑھا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، اے اللہ ہم نے تو محاورے کے اندر بھی یہ سنا کہ جو گھی سیدھے انگلیوں سے نہیں نکلتا اس کو ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑ جاتا ہے، اے اللہ جب ہمارے پاس آپ کی قرآن کی یا حدیث کی آپ کے محبوب کے حدیثوں کی باتیں بتائی جاتی ہیں، محبوب کی نصیحتوں والی باتیں ہمارے سامنے کی جاتی ہیں، تو اے اللہ ہم ان سے پہلو تہی کرتے ہیں، ہم ان کو سننے سے انکار کر دیتے ہیں، اے اللہ ہم ایسے مواقع سے جو ہے وہ اجتناب کرتے ہیں، ایسی جگہوں سے جو ہے وہ پہلو تہی کرتے ہیں، نصیحت کو قبول کرنے سے پہلو تہی کرتے ہیں، اے اللہ جب ہی اس کے نتیجے میں پھر ہمیں مشکل راستے کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، پریشانیوں اور مصیبتوں کے راستے پر ڈال دیا جاتا ہے، اے اللہ اگر ہم میں سے کوئی اس راستے کے اوپر ڈالا جا چکا ہے تو اے اللہ اس کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ تائب ہو کر کے آپ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم نے کچھ دن پہلے ہی ایک بچے سے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا جس نے کہ اے اللہ کتنی باتیں جو ہیں وہ سمجھا دیں، کہ ایک حجام کے پاس ایک آدمی بیٹھا اپنے بال بنا رہا تھا، تو اس حجام نے یہ بات کہی کہ دنیا کے اندر اتنی تکلیفیں نظر آتی ہیں، اتنی پریشانیاں نظر آتی ہیں، تو مجھے تو لگتا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں، اگر خدا ہوتا تو وہ ان لوگوں کی مدد کرتا جو تکلیفوں کے اندر ہیں، تو وہ جو آدمی اس کی بات سن رہا تھا تو وہ بات سن کر کے خاموش ہو گیا، جب اس کی حجامت مکمل ہوئی تو وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے، ویسے تو وہ بہت امیر نظر آ رہا ہے لیکن اس کے سر کے بال جو ہیں وہ بہت لمبے ہیں، بہت بگڑے ہوئے ہیں، اس کی مونچھیں بھی جو ہیں وہ لمبی ہیں، اس کی داڑھی کے بال بھی خراب ہیں، تو وہاں سے پلٹ کر کے حجام کے پاس آیا، اور حجام کے پاس آ کر کے اس نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ دنیا کے اندر حجام ہی نہیں، تو حجام نے اس کی بات ہی سن کر کے کہا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نہیں، میں نے تو ابھی تمہارے بال بنائے ہیں، ابھی تمہاری مونچھیں بنائی ہیں، تو اس نے کہا کہ ابھی دیکھو باہر ایک آدمی نظر آ رہا، اس کے بال اتنے خراب، اس کا حلیہ اتنا خراب، تو وہ اگر تم حجام ہوتے تو تم اس کا حلیہ درست کر دیتے، تو حجام نے یہ جواب دیا کہ وہ تو میرے پاس آیا ہی نہیں، تو میں اس کے حلیہ کو کیسے درست کروں، میں اس کے بال کو کیسے کاٹوں، میں اس کی شکل کو کیسے درست کروں، تو اس نے کہا کہ یہی بات اللہ تعالیٰ کی بھی ہے کہ لوگ پریشان تو ہوتے ہیں لیکن اللہ کی طرف وہ لوٹتے نہیں، اللہ کی طرف وہ پلٹتے نہیں، اللہ سے وہ رجوع کرتے نہیں، اس وجہ سے وہ ان کی پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے کہ ان کے اوپر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اے اللہ یقیناً ہم آپ کی طرف لوٹتے ہی نہیں، ہم آپ کی طرف پلٹتے ہی نہیں، اے اللہ آپ نے تو اپنے قرآن کے اندر فرما دیا کہ مجھے کیا ملے گا اپنے بندوں کو تکلیف میں مبتلا کر کے، اے اللہ یقیناً آپ کو تو آپ کے خزانوں میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوتا کہ آپ کے بندے جو ہیں وہ پریشان حال رہیں، آپ کے بندے جو ہیں وہ مصیبتوں میں گرفتار رہیں، اے اللہ یہ بندے جو ہیں وہ اپنے آپ کے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، اے اللہ آپ نے اپنی ذات کو ظلم سے مبرہ کر دیا، اپنے آپ کو ظلم سے جو ہے وہ پاک کر دیا، کہ آپ نے فرمایا کئی جگہوں پہ فرمایا کہ میں ان کے اوپر ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم خود کرتے ہیں، اے اللہ یقیناً ہم اپنی جانوں کے اوپر خود ہی ظلم کرتے ہیں، اے اللہ ہم نہیں اپنی جانوں کو ظلم کے دریا کے کے اندر گرفتار کر کے رکھا ہے. اے اللہ ہم ہی آپ کی طرف لوٹنے سے انکار کرتے ہیں. اے اللہ آپ تو رحیم ہیں, آپ تو کریم ہیں, آپ تو ودود ہیں, آپ تو شفیق ہیں, اے اللہ آپ تو غفور ہیں, اے اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں. اے اللہ ہم ہی آپ سے معافی نہیں مانگتے, اے اللہ ہم ہی آپ کی طرف پلٹنے سے انکار کر دیتے ہیں. اے اللہ یقیناً اپنے حالات کے ذمہ دار کوئی اور نہیں, اے اللہ ہمارے حالات کا ذمہ دار صرف ہم خود ہیں. اے اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما, اے اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں جو ہے وہ شراب پینے اور زنا کرنے کے علاوہ اور کوئی گناہ گناہ ہی نظر نہیں آتا. اے اللہ ہم اپنے اے اللہ جھوٹ بولنے کو گناہ نہیں سمجھتے, غیبتیں کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے, بد نظری کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے. اور اے اللہ سب سے بڑی بات کہ اے اللہ آپ جیسے رحیم شفیق پروردگار سے غافل رہنے کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. یا اللہ اے اللہ اے اللہ کتنا بڑا ظلم ہے. اے اللہ ہم آپ کی نعمتوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ آپ کی کیسی کیسی نعمتیں دے کر کے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ایک نعمت آپ کی ہم سے اگر تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جائے تو ہم بل بلا اٹھتے ہیں. اے اللہ لیکن اتنی نعمتیں کھانے کے باوجود یا اللہ ہم آپ سے غافل زندگی گزار رہے ہیں. اے اللہ ہمیں آپ کے ذکر کی طرف جو ہے وہ ہماری توجہ ہی نہیں جاتی. اے اللہ آپ نے تو قرآن کے اندر حکم فرما دیا ولا تکم من الغافلین, اور تم غافلین میں سے مت ہو جانا, لیکن اے اللہ آپ کے اس حکم کو ہم نے اگنور کر دیا. اے اللہ اے اللہ آپ کے ذکر, آپ کے استحضار, آپ کے دھیان کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی. اے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائیے کہ اے اللہ ہم بھی اپنے دل کے اوپر محنت کریں اور اس غافل دل کو اے اللہ ذاکر دل میں تبدیل کرنے کی کوشش کے اندر لگ جائیں. اے اللہ ہمارے ہر ہر عمل کے اندر آپ کا دھیان ہو. اے اللہ ہم ہر ہر سوچ کے اندر آپ کی سوچ ہو. اے اللہ ہماری ہر ہر نیت جو ہے وہ صرف آپ کی خاطر ہو. اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے, اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں. اے اللہ جیسا آپ ہمیں بنانا چاہتے ہیں, جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں, اے اللہ ویسا ہمیں بنا دیجئے. اے اللہ ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پا رہے, لیکن اے اللہ اگر آپ چاہیں تو ہم بہت آسانی سے تبدیل ہو سکتے ہیں. اے اللہ ہم آج اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں. اے اللہ آپ ہمیں بدل دیجئے, اے اللہ آپ ہمیں اچھا بنا دیجئے, اے اللہ آپ ہماری غفلت کو دور فرما دیجئے, اے اللہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے آئندہ زندگی کے لیے تمام گناہوں سے توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جن دعاؤں کو تو مانگنے کی آپ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور جن دعاؤں کے اوپر آمین کہنے کی آپ نے ہمیں توفیق نصیب فرما دی, اب اے اللہ ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول بھی فرما لیجئے. اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ نصیحت کی بات سننے کی نیت سے آنے کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ جتنی بھی باتیں اچھی سنی گئیں ان کو اپنے عمل کا حصہ بنانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرما دیجئے تمام فتنوں سے, پریشانیوں سے, مصیبتوں سے, بد اعتقادیوں سے, اور اے اللہ تمام انسانوں کے, شیطانوں کے, اے اللہ نفس کے شرور سے ان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ فتنہ دجال سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ آسانی والا معاملہ فرما دیجئے, مہربانی والا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے کمزور ترین بندے ہیں. اے اللہ ہمیں آزمائشوں میں مبتلا نہ کیجئے. اے اللہ آپ کی نعمتوں میں پلے ہوئے بندے ہیں. اے اللہ اپنی نعمتوں کو ہم سے دور نہ کیجئے. اے اللہ انہی نعمتوں کے اندر رہ کر اپنی یاد والی زندگی, اپنی اطاعت والی زندگی, اپنے دین کا غم والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.